बड़ी खूबसूरत सूरत है आज हमारे सामने। आइए शुरू करते हैं अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इसका हक अदा करने की तौफीक दे और जो इसका मैसेज है, जो इसका सबक है, हम उसको बेहतरीन तरीके से अखज़ कर सकें। नहमतुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुयस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तदब्बुरुल कुरान के सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला हम सूरत अल बुरूज पे आज गौर व फिक्र करेंगे। जो बुनियादी थीम है हमारी आज की इस सूरत की रोशनी में, वो इस्तकामत फिद दीन, स्टेडफास्ट कैसे रहें दीन पर। सूरत का नाम भी बहुत खूबसूरत है और इसके अंदर एक ख़ास वाक्या है, इंशाल्लाह हम इसको लेंगे। अगर आप सब भी थोड़ा थोड़ा आप नोट करने की आदत डालें, काफ़ी क्लासेस हो गई हैं सुनते हुए, अब बड़े हो रहे हैं। मैं तो इसलिए लिखती थी कि मुझे याद हो जाएगा बाद में। मुसहफ़ में इसका नंबर सूरत अल मुतफ़फ़ीन के बाद है। आप देखिए कि दुनिया की तालीम शोर में भी हो जाती है, च्युइंगम खाते हुए भी हो जाती है, पेप्सी कोक बर्गर सैंडविच खाते हुए भी हो जाती है, लेकिन रूहानी इल्म नहीं। वजह क्या है कि ये भी एक खाना है। सूरत बुरूज जो है तरतीब के अतबार से 85 नंबर की सूरत है। अगर हम शुरू से पढ़ रहे होते तो आज हमने खुश होना था कि आज 85वीं सूरत का ख़त्म है। ख़त्म का लफ्ज़ मैंने जान के बोला है क्योंकि हमारे कल्चर में ये लफ्ज़ बहुत ही मारूफ़ है, लेकिन हकीकत यह है कि ये सूरत भी अपने अंदर बहुत कुछ रखती है। सूरत का नाम अलबरूज है और बराजा और बराजा अरबी ज़ुबान में किसी ऊंची चीज़ के लिए नुमाया होना। इसी से लफ्ज़ तबर्रुज भी है जो औरत के सच संवर के बाहर निकलने के लिए सूरत अल अहज़ाब में इस्तेमाल हुआ है। तो बुनियादी तौर पे इस सूरत का पैगाम और इसका मैसेज ये बता रहा है कि ये सूरत मक्का में उस दौर में नाजिल हुई जब जुल्म व सितम आम था, पूरी शिद्दत के साथ मुसलमानों पे सख्तियाँ तोड़ी जा रही थी और मक्का वालों की एक ही ख्वाहिश थी कि किसी भी तरह से ये लोग ईमान से फिर जाएं, इस्लाम से फिर जाएं, और जो हम कर रहे थे शुरू से हमारे साथ जो ये करते थे वो करते रहें। और अल्लाह ताला ने इस सूरत में एक माजी का वाकया बुनियाद बनाया जिससे पता चलता है कि हर दौर में जब भी लोग अल्लाह का बनना चाहते हैं, अल्लाह ताला की तरफ आते हैं, अल्लाह सुबहाना ताला उनको ज़रूर आजमाता है, ठोक बजा के देखता है कि कितने संजीदा हैं। और उस वक्त असल में उनका जो इम्तिहान होता है वो उनके आगे बहुत ऊंचे दर्जों के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो फिर इसमें गिव अप कर देते हैं। हकीकत यह है कि आज के दौर में भी मुसलमानों का यही मसला है। आज वो बात नहीं है जो कि पहले था, लेकिन थोड़ा सा इसको भी समझिएगा। आज सुबह की हमारी क्लास में भी ये दो तीन बार बात आई, सूरत मोमिनून का एंड था, इंतहाई खूबसूरत आयतें थी जिसका खुलासा अगर मैं आपको बताऊँ ना, लोगों की दुश्मनी ना तो रसूल से होती है। रसूल से तो लोग बड़ा प्यार करते हैं, आपने भी देखा होगा आजकल तो लोग रसूल के नाम पे केक काट रहे हैं और हैप्पी बर्थडे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन है दीन और दुनिया का। तो रसूल से तो सबको प्यार है। आप रात जाते 10 मुसलमानों को पूछें, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कुछ नशे में धुत है ना, आप उसको भी जाके पूछे क्या तुम नफ से प्यार करते हो, कहा जी, वो फौरन अंगूठे चूमेगा। नींद में सोए बंदे को उठाकर पूछिए क्या तुम्हें नफ सल्लम से मोहब्बत है, वो कहेगा मुझे मोहब्बत है। तो ये बात तो मुसल्लम है। दूसरी चीज़ है कुरान, क्योंकि हमारे सामने तो यही है ना। तो क्या लोग कुरान से मोहब्बत करते हैं? बेशुमार मोहब्बत करते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं, बरकत है कुरान जहाँ रखा हो वहाँ बड़े अदब से गुजरते हैं, अगर कभी नीचे गिर जाए तो आटा देके उसके वजन का सदका भी दे देते हैं। कुरान से भी लोगों को बड़ा प्यार है। इसमें भी कोई अगर ये आज के दौर में कहे ना कि आज के मुसलमानों को कुरान से मोहब्बत नहीं, तो मेरा ख्याल है ये ब्लेम होगा। चलिए फिर क्या रह गया पीछे? अल्लाह के साथ, अल्लाह की मोहब्बत तो बंदे के दिल में पड़ी हुई है। फितरत के अतबार से मैं और आप मजबूर है कि अल्लाह से प्यार करें, जैसे बच्चा मजबूर है अपनी माँ से प्यार करने को। आप देखते हैं कि माँ गोरी है, काली है, मोटी है, भद्दी है, पढ़ी लिखी है कि नहीं पढ़ी लिखी, बच्चा अपनी ही माँ से प्यार करता है। दूसरा पकड़ना भी चाहे तो बच्चा और होता है। बाद जब माँ डांटती है तो साथ बैठी फूफो खाला पकड़ती है तो बच्चा फिर माँ ही की गोद में जाता है। और वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो अल्लाह की मोहब्बत में बहुत ही शदीद होते हैं। तो फिर अल्लाह से भी कोई दुश्मनी नहीं, क्योंकि अल्लाह का तो खाते हैं, अल्लाह ने तो दिया। क्वेश्चन एक समझिएगा, अल्लाह से प्यार, रसूल से प्यार, किताब से प्यार, तो फिर दुश्मनी किससे होती है? हक से। इंसानों की अक्सरियत को हक से बैर होता है। वजह हक है, अल हक को मुर्रा, अरबी में कलिमा कहेंगे, और उर्दू में कहें तो हक कड़वा होता है, बात सच्ची और कड़वी लगती है। तो हक समझ गए, रियलिटी, ट्रुथ। ट्रुथ हमेशा ख्वाहिशों से टकराता है। बच्चे की ख्वाहिश है चॉकलेट खाने की, लेकिन चॉकलेट उसके हक में बेहतर नहीं है। इसी तरह से याद रखिए कि जो हक होता है ना, उसका टकराव होता है ख्वाहिश से, हवा कहते हैं अरबी में, यानी हक वर्सेस हवा, ख्वाहिशात। लोग अपने एक रंग ढंग में जी रहे होते हैं। अब इमेजिन करें ना मक्का का माहौल, लोगों का एक अपना जीना मरना होता है, खुशियों में जमा होते हैं, गमों में जमा होते हैं। और सूरत मोमिनून में ये भी सुबह हमने पढ़ा कि रातों को महफिलें सजाते थे, सामिरन तहजुरून। उस दौर में टीवी, वीसीआर, फिल्म तो है नहीं थी कि लोग उस पर बैठ जाएं, तो लोगों ने प्रोफेशनल किस्म के वो भांड टाइप के लोग रखे थे। चांदनी रातों में ये काम आसान होता था क्योंकि बिजली तो थी नहीं, तो बैठते थे, महफिलें सजाते थे, फिर सारी सारी रात वो गवैये गाने गाते, कोई लतीफे सुनाते और दूसरे लोग उनको बेलें देते। लोगों का फन था, इनका बिजनेस था। अब ये चीज़ें चल रही थी उस सोसाइटी में, एक रंग था, एक ढंग था। इतने में एक शख्स उठता है, पहले से असरात शुरू हो चुके थे कि ये शख्स कोई नई बात लेकर आ रहा है। अल्लाह के नबी का दिल नहीं लगता था इन चीज़ों में। जाके सीरत में सिर्फ नबी सल्लम की पैदाइश से पहले के हालात पढ़िए, और फिर आपका नबूवत से पहला दौर, 40 ईयर्स, छोटे नहीं होते, कम नहीं है 40 ईयर। नबी सल्लम रहते मक्का में थे, लेकिन उनके रस्मों रिवाज और तौर तरीकों से फितरी तौर पर आप दूर थे, आपका दिल नहीं लगता था। हत्ता के हदीसों में आता है कि दो मुकाम ऐसे मिलते हैं कि आप जवानी में थे, जवान सभी होते हैं, यंग होते हैं, आपके दिल में आया कि ये सारी महफिलें जो सजाते हैं, और खास तौर पर शादियों के नाम पे कई कई दिन रातों को वो महफिल सजाते थे, मत सोचिए कि ये आज के चौंचले हैं, ये डे वन से थे, सिर्फ उसका एक इजहार फर्क हो गया। खैर, किस्सा मुख्तसर, आपने कहा कि ये सब जाते हैं, बैठते हैं, देखें मैं भी देखूँ आज क्या, आज रात मैं भी जाऊँगा शादी में, इंतजार करते रहे। इस्मत अंबिया देखिए, प्रॉफिट्स को अल्लाह ताला कैसे बचाता है माशरे के रंग से। आपको नींद आ गई, बैठे बैठे अपनी जगह पे सो गए, और हदीस में आता है ये बात, सीरत अहले सीरत ने ये बात लिखी है कि जब नबी सल्लम उठे तो सूरज भी निकल चुका था और वो महफिल बर्खास्त हो चुकी थी। एक से ज़ायद बार ये बात हुई। तो बात का क्या मतलब निकला कि लोगों का एक जीना भरना था। जब कोई मुश्किल पड़ती थी, कुछ खुद साख्ता बनाए हुए बुतों के आगे जाते थे। लात को वो लात नहीं कहते थे, वो कहते थे ये अल्लाह का एक रूप है, नऊसु बिल्लाह, अल्लाह से लफ्ज़ लात, मनात, अल-मन्नान अल्लाह ताला का नाम है, उससे मनात देवी थी। वो अपने ज़ोम में शिर्क नहीं करते थे, लेकिन वो शिर्क था। वो कहते थे वो ऊपर वाला तो नज़र ही नहीं आता, तो फिर हमें कुछ नज़र आए फिर हम फोकस होते हैं ना, सामने स्क्रीन ना हो तो मज़ा नहीं आता, और फिर टीचर सामने ना हो फिर तो बिल्कुल ही नहीं मज़ा आता। कुछ इस किस्म की फीलिंग्स होती थी लोगों की। हर काम अपनी मर्जी का करते थे, लेकिन जब कोई जाके पूछता था सुनाओ भाई इब्राहिम कौन थे, कहते थे हमारे बड़े, निस्बत सारी इब्राहिम से, जैसे बिल्कुल आज के दौर में हम मुसलमान निस्बत पूरी नबी सल्लम से जोड़ते हैं। गया से गया गुजरा मुसलमान भी कभी नहीं कहेगा कि मैं नबी सल्लम की बजाय चले हज़रत ईसा से निस्बत जोड़ लूँ, हालांकि वो भी हमारे ही नबी हैं, मूसा से जोड़ो, कहेंगे नहीं नबी सल्लम से निस्बत जोड़नी। मक्का वालों का जो दीन था उस दौर में ये था, निस्बत के नाम पे, रिलेशन के नाम पे, आपस में कहना चाहिए कि ज़रा नसब ऊंचा होता है तो इब्राहिम का नाम लेते थे, जी, वो हमारे बड़े। जैसे आज भी कुछ लोग कुछ बड़े मशहूर लोगों के नाम ले, हाँ, मेरे ससुर उनके दोस्त थे, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी जो थी ना वो अपनी ख्वाहिशात पे चली जा चुकी थी। जब कभी मुश्किल में पड़ते तो बुतों पे जाते, कुछ होता, किस्सा मुख्तसर, एक दिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी पर गारे हिरा में फरिश्ते को भेजा, और वही फरिश्ता आया जो हर दौर में आता रहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। इनका एक लकब रूहुल अमीन भी है, क्यों, बड़े अमानतदार हैं, आगे हम पढ़ेंगे सूरत में। जो पैगाम अल्लाह इनको देते थे ना, एक ज़बर ज़ेर भी फ़र्क किए बगैर आकर नबी सल्लम के दिल पे इल्का कर देते थे। और रूह इसलिए थे कि ज़िंदगी में जैसे रूह है ना, ये अभी तक सारी आवाज़ें क्यों नहीं सेट हो रही, ये बिजली की रूह है इसके अंदर, अगर एक बटन बंद करें बटन सब आवाज़ बंद होगी। तो इंसान का जिसम होता है लेकिन उसमें रूह पड़ती है, वो ज़िंदा हो जाता है। जब नबी सल्लम पर पहली वही उतरी, उसका नाम क्या था, इक़्रा बिस्मि रब्बिका, अपने रब के नाम के साथ पढ़ो। आज उम्मत इल्म से ऐसे भागती है जैसे शायद किसी बहुत ख़तरनाक चीज़ से भागे। अब क्या हुआ, नबी सल्लम ने पैगाम दिया। याद रखिए, बड़ी अहम बात है क्योंकि आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, मैं कोशिश करूँगी कि इसको ऐसे ही पेश करूँ जैसे है। अब जो पैगाम वही के ज़रिए आ रहा था ना, उसकी मेन थिंग क्या थी, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो नहीं है कोई खुदा, कोई ज़ात, कोई इलाह, कोई माबूद मगर अल्लाह, सिर्फ एक को मानो। इसका मतलब क्या था, वेरी सिंपल, हम होते कहते कह लेते मक्का वाले क्या बड़ी बात थी, हमने भी कह के रखा हुआ है, बहुत सारे लोग कहते हैं कह लो ला इलाहा इल्लल्लाह, फ़र्क क्या पड़ता है, हाँ बस इसके बाद जन्नत मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है आज भी, बहुत सारे लोग आज ये सोचते हैं कि मुसलमान जो मर्ज़ी करे वो बचेगा, काफिर बेचारा जितने मर्ज़ी अच्छे काम करे वो फंसेगा। ये गलती है, ये बहुत बड़ी भूल है। ज़ुबान ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह के नबी की दावत में सच्चाई थी, और सच हमेशा फितरत पे कायम बंदे को अच्छा लगता है। जैसे बच्चा माँ आती माँ का दूध पीता है ना, उसमें कोई टेस्ट होता है कि नहीं होता, लेकिन बच्चा पीता है। जब बच्चे को कोई इधर उधर के ड्रिंक्स पीने की आदत डाल देंगे वो दूध छोड़ देता है, फितरत की बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत ऐसी है जैसे हमारे जिस्म की ग़ज़ा। मक्का वालों को ये दावत बहुत अजीब लगी, कहते थे ये क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या था कि लात मनात उज्जा यौक यहूस नसर, जो उन्होंने 313 बुत रखे हुए थे इनको तोड़ो और वो करो जो अल्लाह कहता है। बस यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ। जो बंदा इस्लाम पे आता उसको टॉर्चर करते। सबसे पहली इस्लाम की गवाह कौन है आपको पता है? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। याद रखिए अल्लाह ने औरत को कितनी इज्जत दी है। सबसे पहले नबी के बाद एक उम्मती के पास अगर पैगाम आया ना तो वो मर्द नहीं था, वो औरत थी। और खदीजा तो वैसे ही एक शौहर के करीब रहते हुए उनके किरदार अखलाक को देख चुकी थी, उनको तो कोई तरद्दुद नहीं था। फिर वरका बिन नौफल के पास लेकर गई, सुना होगा आपने, उनके कज़न थे, ईसाई हो चुके थे। फिर अबू बकर सिद्दीक, फिर अली रज़ी अल्लाहु अन्हो, और इसी तरह जैद, जो घर के तीन चार लोग थे ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आए, कलमा पढ़ दिया। अल्लाह के नबी का जो एक कह लीजिए कि जो आपकी एक गवाही है वो अबू बकर के लिए, आपने कहा कि मैंने जिस पर भी इस्लाम पेश किया। आप इस्लाम पेश करने को आज के दौर में ऐसे रिलेट कर लीजिए जैसे हम किसी पे कुरान पेश करें, आइए इधर हम कुरान पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज तो हम सब मुसलमान हैं, हम में से तो किसी को कलमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आज के दौर में जैसे हम किसी मुस्लिम को दावत देते ना आइए कुरान पढ़ें, उस दौर में ऐसे था आइए मुसलमान होए। आपने फरमाया मैंने जिसको भी इस्लाम पेश किया उसने थोड़ा सा तरद्दुद किया सिवाय एक शख्स के, अबू बकर सिद्दीक। कोई रिजेंटमेंट नहीं दिखाई, नो फ्रिक्शन, नो इरिटेशन का। अच्छा आप कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं भी कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक बहुत बड़ा ऑनर होता है। वो बंदा हक की दावत को बड़ी जल्दी कबूल करता है जो होता बुरे माहौल में फंसा हुआ है, लेकिन अंदर से बड़ा प्योर होता है, और अल्लाह ऐसे लोगों को चुन लेता है, ये भी याद रखिए। अब क्या हुआ कि जब इस्लाम शुरू में आया ना तो किसी ने नोटिस भी नहीं लिया, क्यों? पांच छह लोग, यकीन कीजिए, अबू बकर, अली, हजरत खदीजा, हजरत जैद, ये चार लोग बहुत अरसे तक मुसलमान सिर्फ ये चार ही थे। शुरू में 3 साल तक दे डिडंट टेक एनी नोटिस, क्योंकि थोड़े थे, चार से पांच हो गए, छह हो गए, सात हो गए। वो कहते थे ये चंद लोगों का दिमाग ज़रा हिल गया, थोड़े दिन बाद बदल जाएगा, इट्स फाइन। सच में बहुत कशिश होती, एक एक वन बाय वन, वर्ड बाय माउथ इस्लाम फैलता हुआ गया। हुआ क्या कि जब ये इस्लाम फैलना शुरू हुआ ना तो अब मक्का में एक हलचल, वो कहना चाहिए कि एक गड़बड़ हुई कि ये क्या हो रहा है। वजह क्या थी कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाता था ना तो वो फिर मुसलमान बन के दिखाता था, वो ये नहीं कहता इट्स ओके। क्योंकि आप देखिए, अगर आप इस कमरे में पुदीने की एक डंडी लेकर आए, ये कभी नहीं हो सकती कि आप में से पीछे बैठी सिस्टर को बिना स्मेल आए, खुशबू होती है ना, फूल को बोलना नहीं पड़ता उसकी खुशबू आती है। इसी तरह खुदा ना खास्ता बाहर कोई बैड स्मेल आए तो हमें उसकी भी स्मेल आएगी। सच्चे मोमिन में खुशबू होती है, अट्रैक्शन होती है। और इस्लाम सिर्फ ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का नाम नहीं, यकीन कीजिए अगर यही होता तो अबू जहल ज़रूर मुसलमान होता, उसका कॉल आज भी किताबों में मौजूद है, आप जाके पढ़ लें। कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पता है तू सच्चा। देखिए अबू जहल का नाम मैंने पता क्यों लिया, क्योंकि इसको अल्लाह के नबी ने भी एग्जाम्पल बनाई कि हर उम्मत का एक फिरौन होता है, और मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल है, और मेरा फिरौन मूसा के फिरौन से ज़्यादा सख्त है, स्टबन के मानों में। क्यों? मूसा का फिरौन जो था वो तो समंदर में डूबते हुए कह चुका था आमंतु बिल्ला, अल्लाह पे ईमान लाया हूँ, कलमा पढ़ लिया था उसने, ये अलग बात है कि उस वक्त एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन फिरौन जो इस उम्मत का है, ग़ज़वे बदर में जब इसकी जान ली थी तो एक सहाबी जब इसके सीने पे चढ़ के खड़े हुए तो कहने लगा, तकब्बुर का मारा, कहने लगा यहाँ से नहीं मेरी गर्दन, यहाँ से काटना, क्योंकि जब मेरा सर बड़ा होगा मेरी खोपड़ी तो पता चले ये किसी सरदार की गर्दन है, यानी इसका तकब्बुर नहीं ख़त्म हुआ। चले अब अबू जहल का अच्छा कॉल भी सुनिए, बड़ा गौर से सुनने वाला, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। कहने लगा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पता है तुम सच्चे हो, तुम्हारा दीन सच है, तुम्हारा इस्लाम भी ठीक है, मुझे तुमसे कोई बैर नहीं, पर एक चीज़ है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है, आज के दौर में कह लें कुरान कबूल करने से रोक रही है। और वो क्या? कि कुरान पढ़ने के बाद या इस्लाम के बाद फिर मैं शराब छोड़नी पड़ेगी, मुझे कह लीजिए कि नमाज़ें पढ़नी पड़ेंगी, सूद छोड़ना पड़ेगा, जो इस्लाम की पाबंदियाँ हैं, और फ़िलहाल मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए मैं कलमा नहीं पढ़ता। अब देखिए मैंने लफ्ज़ बदल के बताया है, बात इससे मिलती जुलती होगी, लेकिन देखिए बात कितनी सच है। अबू जहल का ये जुमला आज के नाम निहाद वेल नोन मुस्लिम से ज़्यादा जुरत वाला जुमला है। अबू जहल के भी ये तसव्वुर में नहीं था कि मुसलमान हों और अल्लाह की ना माने। कहते मुझे 5 नमाजें पढ़नी पड़ेंगी, मिसाल आज की जुबान में रोजे रखने पड़ेंगे, अभी नहीं मैं तैयार। उसने नहीं ये कहा, और उसको भी अल्लाह के नबी ने नहीं कहा कोई बात नहीं अबू जहल, तुम बस कलमा तो पढ़ लो ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ये अलग बात है कि आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता है, अल्लाह इस आज की सूरत में हम पढ़ेंगे कि इस्लाम आपसे ओवरनाइट चेंज नहीं चाहता, इस्लाम ये नहीं चाहता कि आप एक यू टर्न लें और आपकी गाड़ी उलट जाए। हाँ, अगर आपके दिल में तलब है ना कि आई वॉन्ट टू बी बेटर, आज से कल, कल से परसों मैं बेहतर होंगी, तो देखें अल्लाह आपके ऊपर क्या फूल पत्तियां निछावर करता है। अल्लाह को प्यारे ही वो लगते हैं जो नियत करके बैठे हैं कि मैं कुछ ठीक हूँ कुछ ख़राब हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह जी मैंने कल ज़्यादा ठीक होना है, परसों उससे भी अच्छी होंगी। अल्लाह की सारी दुश्मनी उन लोगों से है जो स्टबन बन के कहते हैं जहाँ थे वहीं रहना, बल्कि अब दिन ब दिन ज़रा एक कदम पीछे जाए। तो खुलासा क्या निकला? जब इस्लाम मशहूर हुआ, अब क्या हुआ? इस घर का बेटा, उस घर की बीवी, उस घर की बेटी, उधर का शौहर, घरों में से कोई एक बंदा मुसलमान होता। अब आप खुद सोचिए, जब एक बंदा मुसलमान होता तो पूरे घर में गड़बड़ शुरू होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो लगा, मक्का के इस दौर में 3-4 साल हो चुके थे नबूवत को मिले, वो क्या था कि आप रिश्ते तोड़ाते हैं, घरों में फूट डलवाते हैं, शौहर बीवी में झगड़े शुरू हो गए, औलादें माँ बाप के आगे बोलने लग गई हैं, और औरतों को भी जुबान लग गई है। वो क्या था कि अल्लाह के नबी की तालीमात और पूरा कुरान पढ़ के देखिए एक जगह भी ऐसा है कि घरों में बदतमीजी करो? नहीं है। वो फ़र्क ये था कि जिसके दिल में हक आ जाता था वो बातिल को बर्दाश्त नहीं करता था, फिर वो अपने अमल से दिखाता था। तो नतीजा क्या निकला कि फिर आखिर में ये टॉर्चर शुरू हो गए। मक्का की सोसाइटी में भी 2 तरह के लोग थे, जैसे 2-3 क्लासेस हर दौर में होती हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। सबसे ज़्यादा इसमें जो पिसे थे ना वो लोअर क्लास पिसे थे, बिलाल, खबाब बिन अरत, हुबैब, इसी तरह से अब सुहेब रूमी, हज़रत सुमैया, बीबी सुमैया थी, माँ थी इनकी, हज़रत अम्मार की, यासिर, ये गुलाम थे, जैसे आज के दौर में कह लें आज के मासियाँ गुलाम। अब जब ये मुसलमान होते और इनके ओनर इनको पकड़ के रुई की तरह धुनक देते थे जैसे डंडा लेकर कोई धुनकता। और बिलाल का वाक्या तो आपने कई दफ़ा सुना होगा कि उमैया गले में रस्सी डाल के और वो रस्सी लड़कों के हाथों में देता था। किताबों में लफ्ज़ आते हैं कि वो मक्का के पहाड़ों में बिलाल को कुत्ते की तरह ले लेके फिरते थे, नीचे पत्थर हैं, जिस्म चटख रहा है, कपड़े फट रहे हैं, और गर्मियों की दोपहर, आज भी जाके देखिए मक्का में, अब तो जाके गर्मी लगती नहीं है, आज से 15-20 साल पहले जब लोग जाते थे काले पत्थर पे, अगर पाँव आ जाता था ना तो पाँव की खाल उतर जाती थी, इतने गर्म पत्थर होते थे, उस पे लिटा देता था पत्थरों पे, और ऊपर बोझ रख देता था, चर्बी पिघलती थी, लेकिन बिलाल की ज़ुबान से आहद आहद की आवाज़ें आती थीं। उस माहौल में अब ये सूरत नाजिल हो रही है। अगर आप टॉर्चर की उस हद को पहुंच गए ना तो आप सूरत बुरूज को अब समझेंगे। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को जिन पे ये जुल्म हो रहे हैं, अब आप देखिए ना, या मैं आप बैठे सिर्फ सुन रहे हैं, थोड़ा सा हम पेन फील करेंगे, दुख होगा, दिल पसीजेगा, लेकिन रियल में तुम्हें कोई चोट नहीं लग रही। सोचिए जिनको रियल में ये सब कुछ हो रहा था, हज़रत सुमैया, पहली शहीदा इस्लाम की, पहली औरत शहीद हुई इस्लाम में, ये भी ऑनर औरत के पास है, अबू जहल की लौंडी थी, जब उसने कहा कि छोड़ो, मना किया, छोड़ दो इस्लाम को, कहा नहीं, तो फिर एक ऊँट के साथ एक पाँव और हाथ और दूसरे ऊँट के साथ दूसरा पाँव और हाथ बांधा और दोनों ऊँटों को अपोजिट तरफ चला दिया और जिस्म में तीर लगाया, जिस्म 2 टुकड़े हो गया। अल्लाह के नबी के पास खबाब बिन अरत आए और आप काबा की दीवार से टेक लगाए बैठे थे, तो अल्लाह के नबी उनको देखकर सीधे हो गए, तो आके उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, अल्लाह के नबी मता नसरुल्लाह, कब आएगी मदद? तो अल्लाह के नबी का रंग बदल गया, आपने कहा तुमसे पहले के लोगों को हक पे आने के बाद लोहे के आरों से चीरा गया, लोहे की कंघियां उनके जिस्म पे फेरी गईं, लेकिन उनके कदमों में कभी लग्जिश नहीं आई, तुम जल्दी करते हो। इस्लाम के साथ हमेशा याद रखिए मजाक ताने, और जो जिस तरह करे। एक बात करके फिर मैं आपको वाक्य पे ले चलती हूँ, बल्कि आयतों पे ले जाऊंगी। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अभी मुझे नहीं जवाब दें, अपने जहनों में सोच लें, क्या आज भी किसी के इस्लाम कबूल करने पे इसी तरह के टॉर्चर होते हैं? क्या आज कोई खुद मुसलमान हो, यानी कोई नॉन मुस्लिम है, रात जाता आए और बैठे और कलमा पढ़ ले, तो क्या ये सोसाइटी, उसके घर वाले, ये मुल्क, ये कंट्रीज, पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ मैं, वर्ल्ड वाइड, क्या आज उस पर टॉर्चर करते हैं? मैंने तो नहीं देखा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़े रेयर केसेस होंगे, घरों में बांध दें, बंद कर दें, और वो भी हमारे ईस्ट में ज़्यादा होगा, घरों में लड़कियों को बांधे। ऐसी भी कहानियां हैं, कुछ हिंदू सिस्टर्स हैं, वो जब मुसलमान हुई तो जो उन्होंने अपनी कहानियां सुनाई कि घरों में बंद करके, बाथरूमों में बंद करते, कहती थी अंदर नमाज पढ़ते हैं। वो रेयर केसेस आज भी हैं, लेकिन ये खास तौर पे वेस्ट में कोई नहीं पूछता। यहाँ तो माँ बेटे को नहीं कहती, स्लोगन है, डोंट टॉक अबाउट रिलीजन, माइंड योर बिजनेस, अपने काम से काम रखो। यहाँ तो एक घर में रहते, देखिए कोई माँ कुछ है, बेटा कुछ है, नो प्रॉब्लम। आज इस्लाम कबूल करने पे कर्टसी की वजह से वो टॉर्चर नहीं है जो पहले था। और अमेरिका में एक बहुत मशहूर राइट है, यहाँ भी होगा लेकिन मैंने सुना नहीं किसी के मुंह से, रिलीजियस राइट। जहाँ आपके रिलीजन का नाम आ जाए वहाँ कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। यानी आप जुमे की नमाज के वक्त पे अगर उठ के जुमा पढ़ने जाते हैं अपनी जॉब से, और आपका जो शेफ है या आपका जो ओनर है या जो भी है, वो आपको रोक नहीं सकता। वजह क्या है? कि इट्स योर फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मौजूद है। तो आज तो कर्टसी है, लेकिन आज कुछ लोग, सिर्फ लोगों की बदलती हुई निगाहें, लोग इस्लाम कबूल करना तो दूर की बात है, इस्लाम के इजहार से भी डरते हैं। वल्लाही अगर मैं आप इस बंद कमरे में तस्बीह नमाज भी पढ़ लेना, पांच नमाजों के अलावा, तो किसी को नहीं बाहर पता चलना कि मैं मुस्लिम हूँ। लोगों को कब पता चलेगा? जब मैं बाहर जाके दिखूंगी कि मैं मुस्लिम हूँ, आई एम मुस्लिम। इस्लाम इज़ नॉट सम वर्ड्स, इज़ अ कम्प्लीट वे ऑफ लिविंग। इस्लाम जब अंदर आता है, हदीस में आता है, इस्लाम बंदे को गिलाता है। आप देखिए, ये सोना जो आप और मैं पहनते हैं, तो गोल्ड को पहले भट्टी में ढालते हैं, प्योर गोल्ड अलग हो जाता है, खोट अलग होता है, फिर प्योर को ढाल के चीज़ों में कुछ ना कुछ और प्रोसेस से गुजारते हैं। हम सब के अंदर बहुत कुछ होता है, हमें पता ही नहीं होता। जब हम अल्लाह के दीन के नाम पर कहीं स्टैंड लेंगे, आज का स्टैंड तो बहुत छोटा सा है, मर्द की दाढ़ी, औरत का पर्दा, एक आधा गज कपड़ा नहीं लगता उस कपड़े को जिस पे आज पूरी दुनिया में शोशे हैं, आज का स्टैंड तो इस पे है। अब आगे तो बाकी बातें, होमोसेक्सुअलिटी को अलाउड कर दो कि ना करो, और बाकी चीज़ें, उसको तो अभी छेड़े ही ना, ये तो अभी बहुत बड़े बड़े सदमे हैं जो आने वाली नस्लों ने सहने हैं। 1990 से लेके अगली 10 साल तक पूरी दुनिया में ये हिजाब मसला था, ये जो मैंने इस वक्त आपके सामने ली, इसको हिजाब कहते हैं। फिर कुछ बहनों ने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा जो मर्जी करो, आज कोई हिजाब पे पाबंदी नहीं। और मैं कह सकती हूँ मैंने इतनी हिजाब की वैरायटी जितनी इन यूरोपियन कंट्रीज़ में देखी है, मैंने सऊदी अरब जाके भी नहीं देखी। रियली आज हिजाब इज़ नॉट अ इशू, इल्ला ये कि चंद, आज का इशू वो है जो अभी जाते हुए आप मुझे देखेंगे, आज इस पे बहुत बातें हैं। वजह के तो आपको क्या लगे मैंने पहने अपने ऊपर, आपको क्या लगे? नहीं, उनको अपने कल्चर पे एक चोट लगती है। मैं इसलिए समझा रही हूँ कि आज सारी बात इस पे है। आज ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह लेकर आप बाहर बैठ जाएं, 500 दाने की तस्बीह लेकर पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई बुरा नहीं मानेगा। हो सकता है आगे आपके पानी की बात बोतलें रख दे, बाजी हमें दम ही करते, दे डोंट माइंड। बट जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह का इजहार करके बाहर निकलते हैं कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, तो सारी दुनिया आपको ऐसे देखती है जैसे आप अजनबी हैं, स्ट्रेंजर्स। अदीन बदऊ गरीबन, हदीस में दीन अजनबी से शुरू हुआ था, यानी जब लोग शुरू में इस्लाम पे आते थे ना, सारी सोसाइटी उनको यूं देखती थी जैसे आज हम में से कोई अपने मुल्कों में गोरे को देखते हैं, हो गोरा आ गया। हाँ, दीन जब नया नया आया था तो सबको अजनबी लगा था। आपने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा कि दीन दोबारा अजनबी लगेगा, लेकिन फतूबा लिल गुरबा, ऐसे स्ट्रेंजर्स के लिए खुशखबरी है। ये मैंने ज़ाहरी गेटअप की बात इसलिए की है कि बाकी चीज़ें इसके बीच में आती हैं। देखिए एक सेंटेंस पूरा करती हूँ, ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़ुबान मुसलमान, ये दिल है ना अंदर, इस दिल से कहिए तस्दीकुम बिल कल्ब, तीन हिस्से ही मान के, इकरारुम बिल लिसान, ज़ुबान से इकरार करना, कन्फेस करना, जिसको आज आप और मैं शहादा देना कहते हैं, और दिल के तस्दीकुम बिल कल्ब, यानी मेरे दिल मुतमईन है कि अल्लाह एक है, मेरा दिल मुतमईन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, मेरा ईमान है कि कुरान कल भी हिदायत की किताब थी आज भी है। अब मैं पूरे दिल से कन्विंस हो गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड फेज पे पहुँच गई। आज कोई एक लड़की से शादी करने के लिए कलमा पढ़ता है, वो मुस्लिम नहीं है, उसका मोटिव फ़र्क है। वो इसलिए कह रहा है कि लड़की ने कहा नहीं, मेरे अब्बा कहते हैं अगर शादी करनी है तो उसे को मुसलमान हो जाओ। हाँ, अगर वो उसकी आड़ में इस्लाम को समझे, दिल से इस्लाम को माने, नो प्रॉब्लम। इसकी मिसाल तारीख में अब्दुल्ला बिन उबई की है। नबी सल्लम से दुश्मनी थी, एक साल देखता रहा, फिर उसको समझ आई नहीं, बाहर रह के नहीं नुकसान दे सकता, अंदर बैठता हूँ फिर दूंगा। तो अंदर बैठने की नीयत से इस्लाम कबूल किया। अल्लाह के नबी को नहीं पता, अल्लाह को पता था। 9 साल तक नबी सल्लम के साथ रहा अब्दुल्ला बिन उबई, 9 साल। 9 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग 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 टाइम। लेकिन देखिए, तबूक के बाद जान गई तो मुनाफ़कत पे गई। क्यों? दिल खोटा था। ज़ुबान से क्या होता है। चलिए, ये भी हो गया। इस्लाम के 3 दर्जे, इकरार बिल लिसान, तस्दीक बिल कल्ब और अमल बिल जवारेह। अमल बिल जवारेह के 5 लिम्स, आंखें, कान, जुबान, दिल, हिदायत को कबूल करने वाले रिसेप्टर्स। जब तक मैं और आप बींग अ मुस्लिम, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा दिल, दिमाग इस्लाम पे मुतमईन नहीं होता, इस्लाम पूरा नहीं होता। अब आप देखिए कि जब नबी सल्लम के दौर में ये सारे टॉर्चर चल रहे थे, मज़े की बात देखिए, आप गली मक्का की गलियों से गुजरते थे तो लोगों को तसलियाँ देते थे, सब्रन अला आले यासिर, आपके लफ्ज़ हैं, सब्र है आले यासिर, इन्नी मौईदुकुमुल जन्ना, मैं तुम्हें जन्नत का वादा देता हूँ। हालांकि अल्लाह के नबी खुद नहीं बोलते थे। वजह क्या है कि तुम आज सब्र कर रहे हो। किसी को एक बार आपने नहीं कहा कि इस्लाम छोड़ दो, चलो ना, अल्लाह को तो तुम्हारे दिल का पता है, और इजहार ही छोड़ दो। देखिए, इजहार के बगैर चीज़ नहीं होती। आप मेडिकल लाइन अडॉप्ट करते हैं, 8 साल लगते हैं कम से कम, पढ़ें, जॉब हासिल करें, जो भी करें, लोग आपको कब कहेंगे आप डॉक्टर हैं? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप किसी ऑफिस में बैठेंगे, आप क्लिनिक बनाएंगे, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, मरीज आएंगे, आप उनकी बीमारियां सुनेंगे, अल्लाह के हुक्म से शिफा होगी, दवा देंगे, आप डॉक्टर हैं। यानी डॉक्टर इज़ विद प्रैक्टिस। इतनी बात क्लियर है? घर बैठ जाए एक मेडिकल लाइन इख्तियार करके, पूरे नंबर भी ले लें, और शादी हो गई, बच्चों में आ गए, बहुत सारी सिस्टर्स ऐसा होता है, कुछ अर्सा तक कोई आपको डॉक्टर नहीं कहेगा। इस्लाम इज़ द नेम ऑफ प्रैक्टिस। ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहना तो एक इम्तिहान है जिससे बंदा गुजरता है। अब जिस दौर की ये कहानी है, उसको यहाँ असहाबल उखदूद कहा गया। ईमान लाने वाले कुछ लोगों को आग से भरे हुए घड़ों में फेंक दिया। बहुत सारे वाक़यात आते हैं, मैं आपको आयत पढ़ के तो फिर इसका खुलासा देती हूँ, इंशाल्लाह आप इसको इंजॉय करेंगे। आप मेरे साथ साथ आयतों पर रहिए तो हम इसको देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए क्या रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود
والسماء ذات البروج. قسم ہے مضبوط قلوں والے آسمان کی، यानी आसमान की कसम है। और आप देख ही रहे हैं पिछली कई सूरतों से कसमी अंदाज़ होता है, अल्लाह सुबहाना ताला बड़ी बड़ी बातों पे कसम खाते हैं। तो मज़बूत कलों से यहाँ मुराद हैं सितारे। हम सब जानते हैं, अब साइंस पढ़कर इतना तो हमें भी पता चल गया कि ये सितारे जो हैं ये प्रोटेक्शन के लिए भी हैं आसमान पे। और किसकी कसम है? वल यौमिल मौऊद, और उस दिन की जिसका वादा किया गया। ये कौन सा दिन है? डे ऑफ जजमेंट। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, मौत, मौत यानी जिसका वादा किया गया। तीसरी कसम किसकी है? वह शाहिदिम व मशहूद, और देखने वाले की भी और देखी जाने वाली चीज़ की भी कसम है। 3 आयतें हैं कसम की, थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। पहली बात है आसमान को यहाँ ज़ाती बुरूज, आसमान चूंकि फीमेल होता है इसलिए ज़ाती आया है, जू नहीं आया। इससे मुराद क्या है आसमान के बुरज? आपने नाम सुना 12 सितारे, स्टार्स, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन आसमानों में बुर्ज से मुराद सितारे, सैारे, जो कुछ भी है उसकी तरफ इशारा है। यौमिल मौत, इसमें नो कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल, इससे मुराद क़यामत है। ये शाहिदिम व मशहूद क्या है? देखिए लफ्ज़ी तर्जमा, शाहिद किसको कहते हैं? मुशाहिदा करने वाला, गवाही देने वाला, अपने लफ्ज़ों में कह लें देखने वाला। तो मशहूद जिसको देखा जाए, राइट? आप अगर इस वाइट बोर्ड को या स्क्रीन को देखते हैं तो आप इस वक्त क्या हैं? शाहिदात, शाहिदा हैं आप। औरत है हम, और ये बोर्ड क्या है, ये मशहूद है। अब सवाल पैदा आता है ये क्या है। इसकी मुख्तलिफ मिसालें दी गई मुफसरीन ने, बस ने इसमें जुमे के दिन को कहा। ये भी एक बात है कि जुमे का दिन गवाही देने वाला है या उस दिन बहुत सारे लोग बाहर आते हैं। तीन चार तफसीरों को छोड़ के सिर्फ वो ले लीजिए जो इस टेक्स से मिलता है। हर वो शख्स जो क़्यामत के रोज़ हाजिर होगा वो शाहिद है, और जो वो देखेगा वो उसका नामे अमाल है और क़्यामत है। क़्यामत के मनाजिर यानी आपके मेरे क़्यामत के दिन जो सामने चीज़ें आएंगी उसका तस्करा। चलिए कसम है कोई भी हो गई, जवाब कसम क्या है, यानी कसम किस बात पे खाई गई, वो आगे आ रहा है। कुतिल अस्हाबुल उखदूद अन्नारी ज़ातिल वकूत इस हुम अलैहा कुऊद वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद। अब सुनिएगा इसको एक स्ट्रेच में।
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود।
मारे गए गढ़े वाले, उस घड़े वाले जिसमें खूब भड़कते हुए ईंधन की आग थी, जबकि वो इस घड़े के किनारे पर बैठे हुए थे और जो कुछ वो ईमान लाने वालों के साथ कर रहे थे इसे देख रहे थे। कुछ लोगों को आग में डालकर फिर मैच की तरह उस मंजर को देख रहे थे। सवाल पैदा होता है कि इन्होंने इनको इस आग के घड़े में क्यों डाला। अगली आयत उसका जवाब है, वमा नकमु मिनहुम उन अहले ईमान से इनकी दुश्मनी इसके सिवा और किसी वजह से नहीं थी। कसूर क्या था, इल्ला युमिनु बिल्लाहि अल-अज़ीज़िल हमीद।
वमा नकमु मिनहुम इल्ला
इसको हाईलाइट करें, ये है पूरी सूरत की जान। इन बिचारों का बस एक ही कसूर था कि वो उस अल्लाह पर ईमान लाए थे जो ज़बरदस्त और अपनी ज़ात में आप महमूद है, जिसकी तारीफें की गई हैं। अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाती वल अर्द, वो जिसकी बादशाहत है आसमान और ज़मीन पर। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर गवाह है। ये कसूर काफ़ी है कि वो मुसलमान है। याद रखिए, जब लोग एक अल्लाह का बनने वाले पे इल्ज़ाम लगाते हैं, टॉर्चर करते हैं ना, तो उनको उनकी और किसी चीज़ से चिढ़ नहीं होती, बस इससे होती है कि इन्होंने अल्लाह को बड़ा क्यों बना दिया। वजह क्या है, ये भी थोड़ा सा समझने वाला नुक्ता है। ज़िंदगी में इंसानों को हमने बहुत सारे वो हक भी दे दिए होते हैं जो अल्लाह के हैं, समझिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्त क्या, आप कहते हैं ना मैं इस शर्त पे आपके घर आऊँगी, तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की कितनी शर्तें और क्या हैं। मैंने जहाँ भी पूछा लोगों को नहीं आता था, और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल से एक बुक और एक लेक्चर भी दिया हुआ है कि जिसको पढ़ने के बाद यकीन ही नहीं आता है, लगता है आज मुसलमान हुए, कलमा तो बस शुरू से ही पढ़ा था। 11 शर्तें ला इलाहा इल्लल्लाह की, आज तक सोचा भी नहीं। अब होता क्या है कि जब एक अल्लाह पर एक इंसान का ईमान आता है ना, तो लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। हमने अल्लाह के हक बंदों को दिए होते हैं, मसलन कौन से, मैं तीन बता देती हूँ, बाकी आप खुद ही ढूंढ लीजिएगा।